विजयादशमी मना रहे हैं हम लोग। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो विजयादशमी के अवसर पर। जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी जिस भी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जरूर विजय लाभ करें, आगे बढ़ें। विजयादशमी नवरात्र चलता है, 9 दिनों का व्रत, उसका ये कल्मिनेशन है, ये अंतिम पड़ाव है। तो उपवास रखते हैं, ईश्वर भक्ति में डूबते हैं। जो फॉल सीजन है हमारे यहाँ, इसको शरद काल कहते हैं। जब आपको आशीर्वाद देते हैं उसमें भी ये मंत्र आता है, जीवे म शरद शतम सुनिया म शरद शतम, सो शरद तक जियो। शरद मतलब फॉल सीजन है, ऑटम सीजन है। तो उसका कारण है, वो 100 वर्षा जीने के लिए नहीं कहा, 100 गर्मी जीने के लिए नहीं कहा। तो गर्मी की याद आते ही वैसे ही बड़ा दर्द होता है, इसी चलानी पड़ेगी, सर्दी में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो शरद एक ऐसा मौसम है जिसमें 2 ऋतु ऐसे होते हैं आपके, वसंत और शरद, स्प्रिंग और फॉल और ऑटम, जिसको दोनों ऐसे सीजन होते हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप से, और जो ईश जो प्रकृति का भी शारीरिक और मानसिक अवस्था, और इंसान की भी शारीरिक मानसिक अवस्था बड़ा निर्मल और साफ होता है। वसंत थोड़ा रंगीन ऋतु है और शरद बड़ा पवित्र ऋतु माना जाता है। यहाँ तक कि जो जो जो, जो जड़ वस्तु है, पानी हवा वगैरह, वो भी इन दिनों कंपैरेटिवली ज़्यादा साफ होते हैं, ज़्यादा निर्मल होते हैं। अब इन दिनों पानी इतना साफ होता है कि जो गंदगी है वो भी नीचे बैठ जाता है। यहाँ तक कि आप गंदे नाले में भी देखेंगे तो पानी के नीचे वो मैला जमा हुआ दिखेगा, पानी साफ होगा। मन बड़ा निर्मल रहता है, व्यक्ति के मन भी बड़ा निर्मल रहता है। इसीलिए ज़्यादातर हमारे जो जो मन को शुद्ध करने वाले जितने तरह के त्योहार सब इन्हीं दिनों होते हैं। उनमें से एक नवरात्र है कि 9 दिन तक आप शरीर को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं खाना पीना कंट्रोल करके, कम खा करके, उपवास रख करके, मन को शुद्ध करते हैं। जब हम ईश्वर भक्ति में डूबते हैं, ईश्वर के भजन, खाली उपवास करें तो वैसे उपवास बड़ा फायदे कर चीज है, शारीरिक लाभ होगा, पर उपवास अगर भक्ति के साथ हो, उपवास करते समय अगर हम ईश्वर भक्ति में डूबें, तो वो जो त्योहार की जो सार्थकता है वो ज्यादा ज्यादा वो हमें प्राप्त होती है, उसका फल मिलता है। और उसके अंत में हम विजयादशमी मनाते हैं। और जैसे कि पता है भारत में जितने त्योहार होते हैं, जैसे भारत के हर चीज बड़ा समय के अनुसार बदल गया, उसका कारण है कि भारत इतने पुराने, भारत का इतिहास इतना पुराना है, इतना पुराना है, तो उसको ज़्यादा देर तक एक एक सिद्धांत को टिकाए रखना मुश्किल होता है। हर 1000-2000 साल में बड़े बदलाव आ जाते हैं। इसी तरह हमारे जो त्यौहार कभी 5000 साल पहले, 10000 साल पहले किसी दूसरे उद्देश्य से बनाए गए थे, उनमें समय के अनुसार बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स जुड़ते गए। अब जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट ज़्यादा हावी हो गया, फिर आगे उसी के नाम से चला। जैसे आप लोग रक्षाबंधन मनाते हो, अब ये भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन उस रूप में नहीं शुरू हुआ था, वो तो शुरू हुआ था जो पढ़ने लिखने वाले लोग, वो उस दिन दोबारा पढ़ने लिखने के लिए दोबारा वो कसम खाते थे, उसको श्रावणी पूर्णिमा कहते थे, कि उस दिन से दोबारा जनेऊ बदल करके नए सिरे से पढ़ना शुरू करते थे। अब धीरे धीरे वो भाई बहन के त्यौहार में मुगल के समय से कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे सारे त्यौहार, विजयादशमी, जो नवरात्र और दशहरा, धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़ गया। नॉर्थ इंडिया में खास करके राम के साथ इसका ज़्यादा संबंध हुआ, जबकि हिस्टोरिकली राम का ये दशहरा के साथ या दिवाली के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रावण को मरना और राम को अयोध्या वापस आना, ये सब मार्च में हुआ, चैत्र मास में। पर किसी भी कारण से जुड़ गया। और ये हमारा स्वभाव है कि जो भी कंटेम्प्रे जो ज्यादा नजदीक होता है, ज्यादा हेवियर होता है, उसको लेकर के हम मनाते हैं। पर असलियत है कि ये हर त्योहार के पीछे एक आध्यात्मिकता छुपी होती है, एक आत्मा निर्मल जो मन को निर्मल करने का भाव छुपा होता है। और जब हम जितना शारीरिक और मानसिक रूप से निर्मल होते हैं, उतना हमारी विजय की संभावना ज्यादा होती है, जीतने की संभावना ज्यादा होती है। अंदर की शत्रु मरे, बाहर के भी शत्रु मरे। इसीलिए हम दुर्गा भी को पूजते हैं। दुर्गा वो परमात्मा परमेश्वर की जो स्त्री रूप है, ये शायद हमारा ही अपना एक ये आस्था है, जो फेथ है, जो जो जिसको हिंदू फेथ कहते हैं, कि जिसमें ईश्वर के तीनों लिंग में रूप मिलता है। ये शायद दुनिया में बड़ा ये अपने आप में यूनिक है। इसमें बड़े सारे यूनिक चीजें हैं, बड़ा डेमोक्रेटिक रिलीजियन है, नेचुरल डेमोक्रेटिक है। उसमें ये भी है कि हम ईश्वर को तीनों रूपों में देखते हैं। बाकी ज्यादातर रिलीजियन में ईश्वर पुरुष होता है ही, और हमारे यहाँ वो ही भी है, शी भी है, एंड इट भी है। उपनिषदों में तो वो सिर्फ नपुंसक है ईश्वर। जितने आप ईश्वर को पुराने शास्त्रों में देखेंगे, वो नपुंसक मिलेगा। पर धीरे धीरे जब हम ईश्वर को एक आकार देने लगे, तो भी हमने ये ध्यान रखा कि वो समस्त संसार को रिप्रेजेंट करे। इसीलिए वो विष्णु भी है, और वैष्णवी भी है, और रुद्र भी है, और रुद्राणी भी है, वो शिव भी है, शिवानी भी है, दुर्ग भी है, दुर्गा भी है। और जब हमने उसका स्त्री रूप दिया, बड़े बारीकी से सोच के भी दिया, वो अलग बात है कि हमारी थोड़ी हिपोक्रेसी बढ़ गई है, जिसके कारण हम उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, पर वो सोच को धन्यवाद देने की जरूरत है। जब हमने उस ईश्वर की स्त्री रूप की भी कल्पना की, और उसके साथ जो गुण धर्म जुड़े, वो भी बड़े 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 उदार और बड़े कल्पनीय है। जैसे हमने उसको शक्ति के रूप में देखा, एनर्जी के रूप में देखा, हमने उसको धन के रूप में देखा, हमने उसको शोभा के रूप में देखा। सारा संसार जो चलता है, वो शक्ति से चलती है, एनर्जी से चलती है। इसलिए वो दुर्गा हो, काली हो, और उसके उग्रता के रूप में भी देखा, हम लक्ष्मी की तरह उसको शांत रूप में भी देखते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति उसको अपने एक आकार दे देता है। पर इसके पीछे जो रहस्य छुपा था, कि वो ईश्वर हर तरह के, वो जब उग्र शक्ति बनती है, विनाशकारिणी बनती है दुष्टों की, आप उसको दुर्गा कहें, काली कहें, या जब वो कल्याणकारिणी बनती है, तो आप उसको सरस्वती कहें, लक्ष्मी कहें, सावित्री कहें, तो उस ईश्वर का जो जो दुर्गम रूप है, या जो दुष्टों को संहार करने वाली जो शक्ति रूप है, शक्ति रूप को इन्हीं दिनों हम पूजते हैं, कि हमारे अंदर की जो बुराइयां है, जो हमारे बाहर की बुराइयां है, उसको नाश करने वाली शक्ति हमारे लिए आदरणीय है। तो इस पर्व के अवसर पर आप सबके भी अंदर के और बाहर के शत्रु नष्ट हुए, आपकी अपनी दुर्गा शक्ति से, अपनी परम शक्ति से, आप ईश्वर के ज्यादा से ज्यादा नजदीक बने। इसी भावना के साथ आज के जो प्रवचन है सत्यार्थ प्रकाश पर हम आते हैं।